ओम शांति। हम आत्मा हैं। आत्मा कैसी है यह समझना बहुत जरूरी है। अगर हम आत्मा हैं तो हमें अपने आप को जानना समझना बहुत आवश्यक है। आज आत्मा कैसी है उसे पूरी रीति जानेंगे। अभी तक सुना है हम आत्मा है, लेकिन है कहाँ? इस शरीर को हम चलाते हैं, लेकिन कैसे चलाते हैं, कार्य कैसे करते हैं, भावनाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं, मुख से शब्द कैसे निकलते हैं, इनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर हम इन बातों को नहीं जानते तो जैसे अज्ञान में है। आप देखेंगे आत्मा जो है, अभी तक के ज्ञान अनुसार हमने जाना है, समझा है कि आत्मा कहाँ है। सामने से दो आंखों के बीच में से 3 इंच अंदर और ऊपर से सिर से 2.5 इंच अंदर बीच में, जहाँ यह दो लाइन एक दूसरे से मिलेंगी, वहाँ जैसे कि आत्मा का ठिकाना है, उसके रहने का स्थान है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो ब्रेन के बीच में जो एक पोर्शन है, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, उसके बीच में एक छोटी सी स्पेस है। उस स्पेस में आत्मा निवास करती है, वहां से ही आत्मा सारे कार्य करती है। वह जैसे कि हमारा अकाल तख्त है, वहां स्थित होकर हम अपने शरीर को चलाते हैं, हर कर्म करते हैं। अभी कई पूछेंगे कि ये कैसे हम कह सकते हैं कि वहां आत्मा है। हम यही कहना चाहते हैं कि आप आपके पूरे शरीर में रियलाइज कीजिए कि कॉन्शियसनेस कहां से उत्पन्न होती है। अपने आप को समय देकर शांति में बैठकर रियलाइज कीजिए कि मैं कहाँ स्थित हूँ, ये सारी भावनाएं कहाँ से उत्पन्न हो रही है। सारे शरीर में देखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि वही एक पोर्शन है जहाँ से अनुभव होता है कि यहाँ ही कॉन्शियसनेस उत्पन्न करने वाला कोई बैठा है, और यहाँ से ही सारे शरीर को ऊर्जा मिल रही है। तो इस प्रकार हम अपने आप को रियलाइज कर सकते हैं और अपनी सही जगह, सच्चा अकाल तख्त जान सकते हैं कि हम इस शरीर में कहाँ स्थित हैं। वहाँ से हम कार्य करते हैं, सारे कार्य करते हैं, बोलने का हो, चलने का हो, देखने का हो, सुनने का हो, सूंघने का हो, कोई भी कार्य हो, वहां बैठकर हम आत्मा करते हैं। जब हम उस ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, वहां से अनुभव करना शुरू करते हैं, तो यह शरीर जैसे कि एक मशीन अनुभव होता है, और हम इस शरीर से अलग है यह अनुभव करना शुरू करते हैं। 2016 में अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस थी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के ऊपर, जहां हमने एक पेपर प्रेजेंट किया ह्यूमन कॉन्शियसनेस। वहां भी यही प्रेजेंट हुआ कि यह सारी जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है, यह ब्रेन से नहीं हो रही है, ब्रेन में कोई बैठा है जो इन वाइब्रेशंस को क्रिएट करता है अपने विचारों से, अपने संकल्पों से। विश्व में पहले यह मान्यता थी कि सारी भावनाएं ब्रेन से उत्पन्न हो रही है, लेकिन अभी जैसे विश्व के सारे साइंटिस्ट ह्यूमन कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करने वाले सारे साइंटिस्ट जब यहाँ तक पहुँचे हैं कि ब्रेन में कोई शक्ति है जो अपने विचारों से ऊर्जा उत्पन्न करती है और अपने शरीर को चलाती है, तब उनकी यह मान्यता भी धीरे धीरे मिटती जा रही है कि ब्रेन ही शरीर को चलाता है। शुरू में वह सोचते थे कि अगर ब्रेन में कोई बैठा है तो कहाँ है। उन्होंने भी यह अनुमान लगा के बताया है कि भावनाएं पीछे से होकर ब्रेन में पीछे से होकर आगे तक पहुंचती है और बीच में जाती है और वहां उन्हें कोई रिस्पॉन्ड करता है। वहां बीच में कोई बैठा है जो फील करता है और जो बताता है कि सामने क्या है और क्या नहीं है। वही रीड करता है हर बात को कि जैसे कि यह एप्पल है, यह हरा कलर है, यह दीवाल है, यह पेड़ है। ये सारा बताने वाला वह बीच में बैठा है, लेकिन वो कौन है उसको भले उन्होंने नाम नहीं दिया, लेकिन उनका भी कहना है बीच में कोई बैठा है जो इस शरीर को चलाता है और उससे ही और वहां से ही सारी एनर्जी निकलती है, ब्रेन में फैलती है और ब्रेन से होके सारे शरीर में जाकर कार्य चलते हैं। तो जो कोई ब्रेन में बैठा है उसे कॉन्शियसनेस है, उसको अवेयरनेस है, उसको सारी जानकारी है, हर बात का ज्ञान उसके अंदर है, उसको हर बात की डिटेल पता है कि हर घड़ी हर समय क्या क्या होने वाला है, क्या हुआ है और क्या हो रहा है, कौन सी एनर्जी किस प्रकार की है वह पहचानता है। भला हम उसे आत्मा कहते हैं, लोग उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियसनेस फील्ड कहते हैं, जो भी कहे, लेकिन हम जो भी वह है हमें सब कुछ पता है। जैसे कि यूएसए के सर डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ और यूके के सर पेन रोज, ये जो बड़े साइंटिस्ट हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि वह नॉन लोकल है, ब्रेन से बना हुआ नहीं, ब्रेन से अलग कोई शक्ति है, वह ऊर्जा है और वह ऊर्जा ही अपने अंदर अनेक ऊर्जाओं के स्रोत से यह कार्य करती है। उसके अंदर अनेक ऊर्जाएं हैं, जैसे कि उसकी अपनी ऊर्जा है, जिन ऊर्जाओं से वह शरीर को चलाते हैं, उनका एक आकार भी है, उसकी ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री में वो रहकर अपने कार्य करता है, उसको वो स्पेस टाइम ज्योमेट्री कहते हैं और उस ज्योमेट्री में अपने सारे जैसे कि पावर्स हैं, उन पावर्स को लेकर शक्तियों को लेकर वह कार्य करती है। तो वह जो कॉन्शियसनेस एनर्जी है उसके अंदर सारे गुण और सारी शक्तियां हैं, उसके सारे मन हैं और इन सारी चीजों से वह कार्य करती है। दुनिया में आज बड़े बड़े साइंटिस्ट इस चीज के पीछे पड़े हैं कि वह शक्ति क्या है, इस शरीर को कैसे चलाती है, यह सारा खेल समझने के लिए वह जी तोड़कर प्रयास कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है, बहुत से लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जिस दिन हम इस चीज को जान जाएंगे कि यह क्या चीज है, यह एनर्जी क्या है, तो दुनिया की सारी कड़ियां अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगी। तो अभी हम आत्मा के बारे में, कॉन्शियसनेस एनर्जी के बारे में बहुत गहराई से जानेंगे और समझेंगे, न सिर्फ जानेंगे और समझेंगे बल्कि अनुभव भी करेंगे कि इस प्रकार से वह कार्य करती है या नहीं है, या सिर्फ सुनी सुनाई कही हुई बातें ही हम सुन रहे हैं। देखिए, कहने वाला कोई भी हो, लेकिन अगर हमें उस चीज का अनुभव नहीं होता तो वह ज्ञान असत्य होने की संभावना है। ऐसे नहीं कि 10 में से 9 को अनुभव हो रहा है, 7 को अनुभव हो रहा है और 1 या 3 को अनुभव नहीं हो रहा है तो वह असत्य है। नहीं, अगर किसी को भी उसका अनुभव नहीं हो रहा है तो जैसे कि वह असत्य है। तो हमें हर चीज का अनुभव बहुत जरूरी है। तो कोई भी बात कोई भी सुनाए, कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन अगर हम अनुभव नहीं करते तो जैसे कि अंधश्रद्धा है। तो आज भी हम जिन बातों को जानेंगे समझेंगे उनका अनुभव बहुत जरूरी है, और यह अनुभव ही हमें स्वयं की पहचान दिलाएगा, स्वयं का अस्तित्व समझ में लाएगा। तो देखिए, दुनिया भी कहती है, अध्यात्म हो या विज्ञान हो, दोनों भी कहते हैं कि आत्मा का एक रूप है। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि फिर वह रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है। तो इसी को जानने के लिए बाबा के ज्ञान में आने के बाद रिसर्च शुरू हुआ। बाबा भी कहते हैं कि आत्मा का रूप है, नाम रूप देश काल के बिना कोई चीज नहीं होती। तो अगर उसका रूप है तो कैसा है, इसी को समझने के लिए जितना हो सके हमने प्रयास किया। पुराने जमाने की जो किताबें हैं, उन किताबों में जैसे कि बड़े बड़े फिलोसोफर्स होके गए, पाइथागोरस हो, प्लेटो हो, सोक्रेटिस हो, ऐसे बड़े बड़े फिलोसोफर्स होके गए, अभी के भी बड़े बड़े साइंटिस्ट होके गए और फिलोसोफर्स होके गए, उन्होंने क्या कहा है आत्मा के बारे में, कि आत्मा कॉन्शियसनेस एनर्जी कैसी है, उनके विचार क्या है। बाबा हमेशा कहते हैं कि आटे में नमक मिसल ज्ञान कहीं न कहीं पड़ा हुआ है, जैसे कि 100 किलो आटे में 10 ग्राम नमक है, मना 100 किलो जो दुनियावी ज्ञान है उसमें 10 ग्राम ज्ञान बाबा का पड़ा हुआ है, सच्चाई का ज्ञान पड़ा हुआ है, लेकिन ढूंढना हमारा काम है। ऐसे नहीं कि सारे शास्त्र सारी किताबें झूठी हैं, नहीं, हर किसी में हर बात की सच्चाई की कुछ न कुछ लिंक है, हिंट है, पड़ी हुई है, बस हमें ढूंढना है। तो यही रिसर्च शुरू हुआ कि हर किताब में हर शास्त्र में आत्मा के लिए क्या कहा है। तो फिर इन सारी बातों का, किताबों का जैसे रिसर्च शुरू हुआ, ज्ञान में आने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस थे मन में, जैसे कि बाबा कहते हैं कि आत्मा का रूप है, तो पहला क्वेश्चन था कैसा है, बाबा कहते हैं कि आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है, आपके गुण और शक्तियां है। तो कहां है, कैसे है? तत्वों की ओर जाए है, इस शरीर को प्रकृति को चलाने वाली ओर जाए है, तो है कहां? बाबा यह भी कहते हैं कि आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट नोंद है, रिकॉर्डेड है। कल्प पहले मक्खी जहां से उड़ी थी, अगले कल्प में भी वहीं से उड़ेगी। मना अगर सारा पार्ट रिकॉर्डेड है तो है कहां? बाबा हमेशा कहते हैं कि आपके पास आपकी गुण और शक्तियां है, मन बुद्धि संस्कार है, लेकिन आपको ऑर्डर करना नहीं आता। मना अगर ऑर्डर करना है तो ऑर्डर करने वाला और जिसको ऑर्डर करना है वह अलग है। तो ये दो अस्तित्व कौन है, जिसको ऑर्डर करना है और जो ऑर्डर करने वाला है? तो है तो कहां है? तो ये सारे सवाल मन में थे, फिर इनके लिए ही रिसर्च जैसे शुरू हुआ। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो साइंस वाले लोग होते हैं उनके मन में बहुत क्वेश्चन होते हैं कि अगर पंखा घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है, कहां से घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से घूम रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, कहां से आती है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उनके सवाल बहुत होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है कि ये कैसे हो रहा है। इसी प्रकार शरीर में कार्य कैसे चल रहे हैं, शब्द कैसे निकल रहे हैं, आंखों से कैसे देखा जा रहा है, भावनाएं कैसे उत्पन्न हो रही है। और बाबा कहते हैं कि सब कुछ आपके अंदर है तो कहां है, ये सारे क्वेश्चन थे। तो जैसे कि इन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिल रहे थे तो एक सेटिस्फेक्शन नहीं था, इन सभी को जानना एक क्यूरियोसिटी बन गई थी। तो दुनिया की अलग अलग किताबें, उनको ढूंढना और उनके अंदर आत्मा के बारे में क्या दिया गया है, इनको ढूंढना जानना शुरू हुआ। साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं आत्मा के बारे में, ये समझना शुरू हुआ। फिर मुरलियों में बाबा क्या कह रहा है आत्मा के बारे में, कि आत्मा कैसी है और आत्मा के अंदर क्या क्या है, बाबा के महावाक्य क्या है, इनका रिसर्च शुरू हुआ। फिर बाबा से रूह रिहान, बाबा जब योग में कुछ बातें सुनाता था, बताता था, बुद्धि को टच कराता था, तो वो किस प्रकार से इनसे जुड़ी हुई है, इन सारी बातों को एकत्रित किया गया। अव्यक्त मुरलियों में भी जैसे बाबा ने कहा है कि मस्तक में चमक रही है रंग बिरंगी मणियां। अभी यह मणियां और रंग बिरंगी शब्द बाबा ने किस चीज के लिए यूज किया है? हमारे अंदर अष्ट शक्तियां हैं, हम राज दरबार लगाते हैं गुणों और शक्तियों का, मन बुद्धि को संस्कारों को पूछते हैं कैसे हो, सारा कार्य ठीक से चल रहा है। तो ये सारी बातें, और बाबा कहता है कि आत्मा सितारे मिसल है। शुरू में बाबा ने कहा कि आत्मा अंगुष्ठ मिसल है, फिर बाबा ने कहा आत्मा बिंदी है, फिर बाबा कहते हैं कि आत्मा सितारे मिसल है। बाबा ने बहुत बारी कहा है कि गुह्य ज्ञान अंत में निकलेगा, अंत में आएगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा। तो ऐसी कौन सी गुह्यता ज्ञान की छिपी हुई है, बची हुई है, जो बाबा ने अभी तक नहीं खोली है? बाबा खुद कहता है कि गुह्य गुह्य राज अंत में खुलेंगे, अभी नहीं बताऊंगा। तो ये सारी ज्ञान की बातें क्या है, तो आत्मा कैसी है, ये सारी बातें समझना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है, ताकि हम अपने आप को जान सके। तो इसी के लिए सारा प्रयास शुरू हुआ। जो विज्ञान कह रहा है कि उसका एक स्ट्रक्चर है, उसकी एक स्पेस टाइम ज्योमेट्री है, और उस ज्योमेट्री से ही वह कार्य करती है, तो वह कैसी है? जैसे कि शुरू में ऋषि कणाद जी ने कहा था कि एटम फाइनल है, अनडिवाइडेड है, उसको विभाजित नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन बाद में जैसे अनेक साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे कि रदरफोर्ड आए, नील बोर्स आए, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि नहीं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। मना जो मान्यता शुरू में थी कि एटम ही फाइनल है, तो बाद में वह मान्यता बदल गई कि एटम फाइनल नहीं, एटम के अंदर और तीन जैसे कि एनर्जीज हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन अभी तक आप देखेंगे कि साइंस यहाँ तक भी पहुंचा है कि एटम के अंदर अनेक सब एटॉमिक पार्टिकल है, बहुत गहराई तक विज्ञान पहुंचा है। उसी प्रकार आत्मा सिर्फ सितारे मिसल नहीं है, उसके अंदर उसके गुण और शक्तियां हैं। इसका प्रमाण है बाबा की मुरलियां, बाबा के महावाक्य, उसकी अनुभूति, विज्ञान का कहना, फिलॉसफी का कहना, अध्यात्म और विज्ञान दोनों के कहने को, दोनों की मान्यताओं को अगर हम एक करेंगे तो हम पाएंगे कि आत्मा का एक रूप है और जिसके अंदर आत्मा के गुण और शक्तियां हैं जिनसे आत्मा कार्य करती है। देखिए, यह हमारे अनुभव है। हम कहते हैं गुड़ मीठा है, आप विश्वास नहीं कीजिए। अगर आप बिना अनुभव किए विश्वास करेंगे तो आप अंधश्रद्धा में जिएंगे और अंधश्रद्धा में ही मरेंगे। तो बिना अनुभव किए हमारी बातों पर भी विश्वास मत कीजिए, किसी की भी बातों पर विश्वास नहीं कीजिए। आप गुड़ को चखे देखिए, एक बार आपने गुड़ को चख लिया फिर सारी दुनिया कहे गुड़ कड़वा है, फिर भी आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने उसे चख लिया है कि वह कैसा है। तो इसी प्रकार आत्मा कैसी है उसके अनुभव करके देखिए कि सच में हमारे अंदर क्वालिटीज हैं, गुण और शक्तियां हैं या नहीं है, हमारे अंदर मन बुद्धि संस्कार है या नहीं है, यह सारे अनुभव करके देखिए। हम कहते हैं कि आत्मा का एक रूप है सितारे मिसल, उसके अंदर उसके गुण और शक्तियों के 16 ऊर्जा बिंदु है जिनसे वो कार्य करती है, मन बुद्धि संस्कार है। तो आप विश्वास नहीं कीजिए, आप उन्हें अनुभव करके देखिए कि है या नहीं है। तो हम जो आत्मा है, हमारे अंदर ही सब कुछ है, हमारे अंदर हमारे मन बुद्धि संस्कार है, हमारे 7 गुण है, 8 शक्तियां हैं, हमारे 3 मन है जैसे कि कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये सारा खेल हमारे अंदर है। 5 तत्वों को चलाने वाली ऊर्जाएं हमारे अंदर है, 6 महातत्व भी हमारे अंदर है। इनका अध्ययन करने के लिए हम आत्मा के अंदर जो जो गुण और शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार हैं, तत्वों की ऊर्जाएं हैं, इनका अध्ययन करने के लिए हमने जस्ट एक नंबर दिए हैं, एक सीरियल में 1 से 16 तक नंबर दिए हैं। इनको हम समझेंगे और अनुभव करेंगे। फिर इसे कहते हैं कि आप विश्वास नहीं कीजिए जब तक आपको अनुभव नहीं होता। बिना अनुभव के विश्वास रखेंगे तो अंधश्रद्धा में जाएंगे। फिर इसे हम कहते हैं, तो जो जो बातें हम अभी सुनेंगे जानेंगे उसे समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बार हम कहते हैं जानो नहीं मानो नहीं समझो, पूरी रीति समझो। एक बार समझ लिया तो आप ज्ञानी बन गए। तो हम समझने का प्रयास करेंगे, तो हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हमारे अंदर 16 नंबर का पॉइंट है, वह है हमारी बुद्धि। जो 14 नंबर का पॉइंट है, वह है हमारा मन। जो 15 नंबर का पॉइंट है, वह है हमारे संस्कार। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे संस्कार यहाँ है, हमारे अंदर है। हम जो आत्मा है, सितारे मिसल, उसके बीच में हमारे मन, बुद्धि और संस्कार है। हमारे जो 3 मन है, जैसे कि कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, यह भी यहां ही स्थित है। तो जो हमारा मन है, 14 नंबर का पॉइंट, वह है हमारा कॉन्शियस माइंड। जो हमारी बुद्धि है, 16 नंबर का पॉइंट, वह है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और जो हमारे संस्कार है, 15 नंबर का पॉइंट, वह है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। यह हमारे 3 मन है जिनके द्वारा हम सारे कार्य करते हैं। आज दुनिया में माइंड की ट्रेनिंग दी जाती है, मन को ट्रेन करने की ट्रेनिंग दी जाती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड की। लेकिन अगर वह माइंड कहाँ है यही पता नहीं, तो ट्रेनिंग कैसे देंगे और किसको देंगे? मन को देनी है, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, एक्टिवेट करना है, अनकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना है, कॉन्शियस माइंड को स्टेबल करना है। लेकिन जब तक यह कहा है यही पता नहीं, तो सिखाएंगे कैसे और किसको? तो इस सारे ज्ञान से हम जान जाएंगे कि हमारे मन कहाँ है, और आगे चलकर यह भी समझेंगे कि उनको ट्रेन कैसे करना है, उनको संस्कारित कैसे करना है, उनको डिवाइन कैसे बनाना है, आगे चलकर हम सीखेंगे। तो यह हमारे 3 मन है। देखिए, हमारे अंदर हमारे 7 गुण भी है, हमारे अंदर ही है। बाबा हमेशा कहते हैं आपके अंदर ही आपकी शक्तियां हैं, आपके गुण हैं। लेकिन ऑर्डर करना नहीं आता। ऑर्डर तभी कर पाएंगे जब हमें पता हो कि वह कहाँ है। अगर पता ही नहीं कि वह कहाँ है, तो ऑर्डर कैसे करेंगे और किसको करेंगे? तो आज जानेंगे कि हमारे 7 गुण, अष्ट शक्तियां कहाँ है। तो जैसे कि हमारा जो 16 नंबर का पॉइंट है, जो कि हमारी बुद्धि है, उसी में ज्ञान की ऊर्जा है, वही ज्ञान यह गुण है। जो 10 नंबर का पॉइंट है, वह है हमारी शांति की ऊर्जा का पॉइंट, वहां ही हमारा शांति यह गुण है। जो 11 नंबर का पॉइंट है, वह है हमारी पवित्रता। जो 1 नंबर का पॉइंट है, वह है हमारा सुख। जो 2 नंबर का पॉइंट है, वह है हमारा स्नेह प्रेम। जो 12 नंबर का पॉइंट है, वह है हमारी शक्ति। और हमारे अंदर ही जो 13 नंबर का पॉइंट है, वह है आनंद। यह है हमारे 7 गुण। इन्हीं से हमारे गुण प्रदर्शित होते हैं। इसी प्रकार हमारे अंदर अष्ट शक्तियां भी हैं। इन्हें भी हम समझेंगे और जानेंगे। जो 9 नंबर का पॉइंट है, वह है हमारी सहन शक्ति। जो 15 नंबर का पॉइंट है, जो कि हमारे संस्कार है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, उसी में हमारी समाने की शक्ति समाई हुई है। जो 7 नंबर का पॉइंट है, वह है हमारी परखने की शक्ति। जो 6 नंबर का पॉइंट है, वह है हमारी सामना करने की ऊर्जा, सामना करने की शक्ति। जो 14 नंबर का पॉइंट है, जो कि हमारा मन है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, उसी में विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है। जो 8 नंबर का पॉइंट है, वह है हमारी सहयोग शक्ति। जो 13 नंबर का पॉइंट है, जो कि हमारी आनंद की ऊर्जा है, वही है हमारी समेटने की शक्ति। और जो 16 नंबर का पॉइंट है, जो कि हमारी बुद्धि है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें ज्ञान है, उसी में निर्णय शक्ति है, और यही हमारी निर्णय शक्ति है। तो यह अष्ट शक्तियां हमारे अंदर ही है। इसी प्रकार और 3 दिव्य गुणों के पॉइंट है, दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियां हैं। जैसे कि 3 नंबर का जो पॉइंट है, वह है दृढ़ता। 4 नंबर का जो पॉइंट है, जो ऊर्जा है, वह है नम्रता। और जो 5 नंबर का पॉइंट है, ऊर्जा है हमारे अंदर, वह है अंतर्मुखता। इस प्रकार यह सब कुछ हमारे अंदर ही है और इन्हीं से हमारा कार्य चलता है। हम फिर से कहते हैं कि गुड़ मीठा है, अब विश्वास नहीं कीजिए। हम कहते हैं यहाँ गुण और शक्तियां हैं, यहाँ मन बुद्धि संस्कार है, अब विश्वास नहीं कीजिए, आप अनुभव करके देखिए, क्योंकि अनुभव ही ज्ञान है। बाकी सारी सुनी सुनाई कही हुई किताबों की बातें हैं। अनुभव ही ज्ञान है। जिस ज्ञान का आपने अनुभव किया है, जिन वाक्यों का, महावाक्यों का आपने अनुभव किया है, वही आपका ज्ञान है। बाकी सारी किताबों की बातें हैं। तो जो हमने कहा कि आत्मा के अंदर ये सारी बातें हैं, ये सारे गुण और शक्तियां हैं, आप अनुभव करके देखिए। हम आत्मा के अंदर इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जाएं भी हैं। 5 तत्वों को चलाने के लिए 5 तत्वों की अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। सबको पता है 5 तत्व, जैसे कि आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। इन तत्वों से हमारा शरीर बना है और इन तत्वों की ऊर्जाएं हैं और इन ऊर्जाओं से शरीर चलता है। तो हम आत्मा के अंदर ही इन तत्वों की ऊर्जाएं हैं और हम आत्मा से ही यह ऊर्जाएं शरीर में प्रवाहित होकर शरीर चलता है। पांच तत्व चलते रहते हैं। तो यह पांच तत्वों की ऊर्जा हमारे अंदर ही है, यह भी हम जानेंगे और समझेंगे। जैसे कि आकाश तत्व है, हमारे शरीर में आकाश तत्व है, उसको चलाने के लिए ऊर्जा हमारे अंदर जो 10 नंबर का पॉइंट है, शांति का पॉइंट है, उसमें आकाश तत्व की ऊर्जा है। यहां से ही हमारे सारे शरीर में आकाश तत्व की ऊर्जा फैलती है। किस प्रकार फैलती है, तत्वों से ऊर्जा कहां से शरीर में जाती है, यह भी विस्तार से हम जानेंगे। तो जो शांति का पॉइंट है, उसमें आकाश तत्व की ऊर्जा है। जो 11 नंबर का पॉइंट है पवित्रता का, जिसमें पवित्रता की ऊर्जा है, उसमें जल तत्व की ऊर्जा समाई हुई है। जो 1 नंबर का पॉइंट है सुख का, उसमें अग्नि तत्व की ऊर्जा समाई हुई है। जो 2 नंबर का पॉइंट है प्रेम का, उसमें वायु तत्व की ऊर्जा समाई हुई है। जो 12 नंबर का पॉइंट है, जिसमें शक्ति की ऊर्जा है, उसमें पृथ्वी तत्व की ऊर्जा समाई हुई है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि इन पांच तत्वों का निर्माण छठे महातत्व से हुआ है, जिसे ब्रह्म तत्व कहा जाता है। परम धाम का ब्रह्म महातत्व अलग प्रकार का है और इस साकार वतन का ब्रह्म तत्व अलग प्रकार का है। तो यह पांच तत्व जिस ब्रह्म तत्व से बने हैं, उसकी ऊर्जा भी हमारे अंदर है। वह हमारा जो बुद्धि का पॉइंट है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसी में छिपी हुई है। वहां से ही छठे महातत्व की ऊर्जा सारे शरीर में और प्रकृति में फैलती रहती है। देखिए यह शरीर पांच तत्व से बना हुआ है और पांच तत्व ही शरीर को चलाते हैं और इनकी ऊर्जा हम आत्मा से इस शरीर को मिलती है। उसके प्रमाण और प्रयोग हम आपको बताएंगे। अब खुद अनुभव करने का प्रयास कीजिए। इन सभी के साथ हमारे शरीर में 7 चक्र भी हैं और 7 चक्रों का कनेक्शन हम आत्मा के अंदर ही है। हमारा शरीर 7 चक्रों से चलता है और 7 चक्रों को ऊर्जा भी हम आत्मा के अंदर से ही प्रवाहित होती है। जैसे कि हमारे मूलाधार चक्र को ऊर्जा हम आत्मा में जो शक्ति का 12 नंबर का पॉइंट है उससे मिलती है, उसका कनेक्शन मूलाधार चक्र से है। हमारे स्वादिष्टान चक्र को ऊर्जा हमारे अंदर जो पवित्रता का 11 नंबर का पॉइंट है उससे मिलती है। हमारे मणिपुर चक्र को ऊर्जा हमारे अंदर जो 1 नंबर का सुख का पॉइंट है उससे मिलती है। हमारे अनाहत चक्र को ऊर्जा हमारे अंदर जो 2 नंबर का पॉइंट है प्रेम का, स्नेह का उससे मिलती है। हमारे विशुद्धि चक्र को ऊर्जा हमारे अंदर जो शांति का पॉइंट है आकाश तत्व का 10 नंबर का उससे मिलती है। हमारे आज्ञा चक्र को ऊर्जा हमारे अंदर जो बुद्धि का पॉइंट है उससे मिलती है। और हमारे सहस्त्रार को ऊर्जा हमारे अंदर जो 13 नंबर का पॉइंट है आनंद का उससे मिलती है। इस प्रकार हमारे 7 चक्र भी हम आत्मा के अंदर जो ऊर्जाएं हैं उसी से चलते हैं। 7 चक्रों के साथ हमारे शरीर के बाहर 5 कोश भी हैं। उनको ऊर्जा भी हम आत्मा से ही मिलती है। इस प्रकार यह सारा संसार हम आत्मा चलाती है। शरीर रूपी संसार, शरीर रूपी विश्व हम आत्मा चलाती है। इनको चलाने के लिए गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर ही है। हम आत्मा के अंदर जो अभी हमने देखे वह अलग अलग गुण और शक्तियाँ हैं। इनमें जब गिरावट आ जाती है, माना इनकी ऊर्जाओं में जब कमी हो जाती है, तो उसका परिणाम हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक तौर पर दिखाई देता है। देखा जाए तो बाहर में कुछ नहीं होता, सब कुछ अंदर चलता है, बस उसका परिणाम हमें बाहर दिखाई देता है। लेकिन असली बीमारी अंदर ही है और उपचार भी, दवाई भी अंदर ही होनी चाहिए। जब हमारे अंदर जो गुण और शक्तियां हैं उसकी ऊर्जा कम होती है, तो उसका परिणाम हमारे शारीरिक जीवन में कैसे आता है यह हम जानेंगे। तो जो हमारे 7 चक्रों के ऊर्जा बिंदु है, उसमें 7 चक्रों की ऊर्जाएं समाई हुई है। वहां से ही 7 चक्रों को ऊर्जा प्रवाहित होती है यह हमने जाना है। सभी को अच्छे से ज्ञात है कि 7 चक्रों की ऊर्जाएं कम होने के बाद उनसे संबंधित अलग अलग बीमारियां पैदा हो जाती है और हमारा शरीर बीमार अनुभव करता है। दुनिया में यह ज्ञान तो विस्तार से है कि मूलाधार चक्र के ऊर्जा के कमी के कारण कौन सी बीमारी पैदा होती है, स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा के कारण कौन सी बीमारी पैदा होती है, यह सारा ज्ञान आज दुनिया में उपलब्ध है। इस विस्तार में हम नहीं जाएंगे, बस सार रूप में यही कहना चाहेंगे कि अगर चक्रों में ऊर्जा कम होने के कारण बीमारी पैदा होती है और चक्रों की ऊर्जा का स्रोत हम आत्मा के अंदर है, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उस ऊर्जा को दोबारा से परमात्मा से कनेक्ट होकर भरपूर करें। तो जब हम हमारे चक्रों की ऊर्जा यानी गुण की ऊर्जाओं को बाबा से कनेक्ट करके चार्ज करते हैं, भरपूर करते हैं, तो उस चक्र से संबंधित उस प्रकार की बीमारी नष्ट हो जाती है। अगर किसी को खून की बीमारी है, माना पवित्रता की ऊर्जा शरीर में कम हो चुकी है, जिसके कारण स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा कम हुई है और खून को चलने के लिए, दौड़ने के लिए, कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यक है उतनी नहीं मिल पा रही है और उसी के कारण खून की बीमारियां पैदा हो रही है। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनमें जितने भी सेल्स हैं, उन सेल्स को चलने के लिए एक पर्टिकुलर प्रकार की पर्टिकुलर अमाउंट में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब यह ऊर्जा की कमी हो जाती है तो उस ऑर्गन में बीमारी आ जाती है। इसी प्रकार जब हमारे अंदर सुख की ऊर्जा कम हो जाती है तो उससे अग्नि तत्व कमजोर होकर मणिपुर चक्र कमजोर हो जाता है और उससे संबंधित बीमारियां पैदा हो जाती है। जब वायु तत्व की प्रेम की ऊर्जा कम हो जाती है तो उससे संबंधित अनाहत चक्र हार्ट चक्र कमजोर होकर उसकी बीमारियां शरीर में आना शुरू हो जाता है। जब शक्ति की ऊर्जा कम हो जाती है तो उससे संबंधित मूलाधार चक्र की ऊर्जा कम होकर पृथ्वी तत्व से संबंधित बीमारियां पैदा होना शुरू होती है। आकाश तत्व की ऊर्जा जब कम हो जाती है, माना शांति इस गुण की ऊर्जा कम हो जाती है, तो विशुद्धि चक्र से संबंधित बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती है। आज्ञा चक्र की ऊर्जा जब कम हो जाती है तो ब्रेन की बीमारियां, सुरुपि की बीमारियां शुरू हो जाती है और उसी प्रकार सहस्त्रार चक्र से संबंधित जो बीमारियां हैं वह आनंद की ऊर्जा की कमी के कारण पैदा होना शुरू होती है। जब बाबा से हम इन गुणों की ऊर्जाओं को अपने अंदर भरना शुरू करते हैं, पर्टिकुलर उस एनर्जी कोड के कलर में, तो हम अनुभव करते हैं कि वह बीमारियां ठीक होती जा रही है। देखा जाए तो यह कलर थेरेपी नहीं है। किसी को लगेगा कि यह कलर थेरेपी है, लेकिन यह कलर थेरेपी नहीं है। दुनिया में 7 रंग और उसमें 2 अलग रंग, एक ब्लैक और एक व्हाइट, ऐसे 9 रंगों की रचना है। ये ईश्वर का मांडवा, ईश्वर की क्रिएशन 9 रंगों से ही हुई है। उन 9 रंगों के अलग अलग शेड से अलग अलग रचनाएं हुई है। जैसे 9 रंग है, वो 9 रंग ना होकर 9 ऊर्जाएं हैं। उसी प्रकार 9 ग्रह भी आकाश में स्थित है। ये सारी रचना बहुत अलग प्रकार के एक ढांचे में बनी हुई है। फिलहाल हम यही जानेंगे कि उस प्रकार की ऊर्जा हमारे उन ऊर्जा बिंदुओं में, उन गुणों में भरने के बाद उस प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती है जो उनसे संबंधित है। ऐसे राजयोग से हम गुणों से भरपूर होकर सभी प्रकार की शारीरिक बीमारियों को नष्ट कर सकते हैं। जब यह ज्ञान हमें नहीं था तब भी हम परमात्मा को, बाबा को याद करके अपनी बीमारियों को नष्ट करते थे। मुरलियों में बाबा ने कई बार कहा है कि बच्चे जब बीमार हो, कोई बीमारी आए तो योग बढ़ाओ। योग बढ़ाने से यही होता था कि जिस गुण की ऊर्जा कमी है वह ऊर्जा उसमें भर जाती थी और उसी से चक्रों में ऊर्जा संतुलित होकर वह बीमारी नष्ट होती थी। बस आज हमें उसकी क्लैरिटी मिली है कि किस प्रकार से परमात्मा को याद करने के बाद शरीर की बीमारियां नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार मानसिक बीमारियां हैं। जब हमें किसी प्रकार का मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, माना हमारे मन में ऊर्जा की कमी है। हमारे तीन मन हैं, जो हमने जाने हैं, समझे हैं। जब इन तीन मनों में ऊर्जा की कमी होती है, तो उस ऊर्जा की कमी के कारण हमारा मन उसी प्रकार के विचार कर पाता है जितनी ऊर्जा उसके पास है, और ऐसे विचार उत्पन्न होने के बाद उन विचारों से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, वह हमारे शरीर में अनइजीनेस पैदा करते हैं। माना सेल्स को, ऑर्गन्स को जितनी ऊर्जा पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंच पाती। जैसे कि जब हमारा मन निगेटिव विचार शुरू करता है, तो उसी प्रकार के वाइब्रेशन एनर्जी हमारे में से हमारे चक्रों में भरकर उससे शरीर में फैलती है, और शरीर के सेल्स को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी नहीं मिल पाती, बल्कि निगेटिव ऊर्जा उनमें भरती रहती है, जिसके कारण सेल्स बीमार होती है और सेल्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, और उसका परिणाम हम शरीर में स्ट्रेस फील करना शुरू करते हैं, मन में स्ट्रेस फील करना शुरू करते हैं। तो जब हम परमात्मा से हमारे मन, बुद्धि, संस्कार, यह जो तीन मन है, इनको कनेक्ट करके उस पर्टिकुलर एनर्जी कोड में, कलर कोड में चार्ज करना शुरू करते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि वहाँ की, यानी मन, बुद्धि, संस्कारों की ऊर्जाएं बढ़कर हम एक पॉजिटिविटी का, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ का अनुभव करना शुरू करते हैं। हम कितना भी कहें कि स्ट्रेस बाहर से आता है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि स्ट्रेस हमेशा अंदर ऊर्जा की कमी के कारण पैदा होता है। तो राजयोग से हम स्ट्रेस फ्री लाइफ भी जी सकते हैं। बाहर कुछ भी हो जाए, लेकिन मन के पास पर्याप्त ऊर्जा होने के कारण हमारा मन निगेटिविटी में कभी नहीं जाएगा, बल्कि हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण में ही चलता रहेगा। इसी प्रकार आर्थिक समस्या भी उसका कारण भी हमारे अंदर ही है। अगर हम जानेंगे तो हमारे आर्थिक की स्थिति ठीक रहने के लिए हमारे मूलाधार की ऊर्जा कार्य करती है। जब मूलाधार की ऊर्जा कम हो जाती है, तो हमारे जीवन में आर्थिक समस्या आना शुरू होता है। इसके साथ और दो ऊर्जाएं हैं, जैसे कि आज्ञा चक्र है, बुद्धि की ऊर्जा है, निर्णय शक्ति की ऊर्जा, ज्ञान की ऊर्जा और पवित्रता की ऊर्जा है। यह दो ऊर्जा जब भरपूर होती है, तो हमें जीवन में धन की कमी कभी महसूस नहीं होती, धन आना शुरू होता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो गाड़ी, मकान, सोना, चांदी, पैसा, यह धन नहीं है, यह धन के रूप है। धन एक ऊर्जा है। जब तक धन की ऊर्जा हमारे अंदर पर्याप्त नहीं है, तब तक हमारे जीवन में यह धन के रूप नहीं आ सकते, और हमारा जीवन धन से सुखी संपन्न नहीं बन सकता। तो देखिए, जब हम मूलाधार की ऊर्जा को बाबा से, परमात्मा से, मन शक्ति की ऊर्जा को कनेक्ट करके चार्ज करना शुरू करते हैं, भरना शुरू करते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में धन बढ़ता जा रहा है। इसके साथ हमें बुद्धि की ऊर्जा, ज्ञान की ऊर्जा को भरपूर करना पड़ेगा, क्योंकि मूलाधार की ऊर्जा बढ़ाने के बाद धन तो आया, लेकिन उस धन को कहाँ लगाना है यह ज्ञान होना बहुत जरूरी है। निर्णय शक्ति, समय पर काम करना बहुत जरूरी है। तो जब हम ज्ञान की ऊर्जा को हमारे अंदर भरते हैं तो धन का सही इस्तेमाल शुरू हो जाता है। साथ ही साथ धन टिकना भी बहुत जरूरी है, और धन टिकने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। जहाँ पवित्रता है, जहाँ शुद्धि है, वही धन टिक पाएगा। इसलिए 11 नंबर की जो पवित्रता की ऊर्जा है, उसको भरपूर करना जरूरी है। जब हम उसे भरपूर करते हैं तो धन हमारे जीवन में टिकना शुरू हो जाता है। इस प्रकार शक्ति की, ज्ञान की और पवित्रता की ऊर्जा को भरपूर करके हमारे जीवन में हम धन की कमी को दूर कर सकते हैं, यह अनुभव हम कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे जितने भी रिश्ते हैं, उनका कनेक्शन भी हमारे गुणों और शक्तियों से है। आज हम कहते हैं कि हमारे रिश्ते तनाव में जा रहे हैं, हमारे रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। उनका भी मूल कारण है हमारे गुणों और शक्तियों की ऊर्जा की कमी। आप अनुभव करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से राजयोग में मूलभूत गुण और शक्तियों को धारण करने से रिश्ते भी ठीक होने लगते हैं। बाहर कुछ नहीं करना है, सब कुछ अंदर ही होता है, अंदर ही चलता है। राजयोग में सारा कार्य अपने ऊपर अंदर ही किया जाता है। तो आप अनुभव करेंगे कि किस प्रकार से गुणों की ऊर्जा बढ़ाने से रिश्ते ठीक होने लगते हैं। अगर किसी का अपनी माता से या सास से रिश्ता खराब हो चुका है, तो उसका मूल कारण है शांति की ऊर्जा की कमी। किसी का अपने पिता से या ससुर से रिश्ता खराब हो चुका है, तो उसका मूल कारण है शक्ति की ऊर्जा की कमी। किसी का अपने युगल से, पति पत्नी से रिश्ता खराब हो चुका है, तो उसका मूल कारण है हमारे अंदर प्रेम की ऊर्जा की कमी। किसी का अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से, कलीग से रिश्ता खराब हो चुका है, बिगड़ चुका है, तो उसका मूल कारण है सुख की ऊर्जा की कमी। किसी का अपने गुरु से रिश्ता बिगड़ चुका है, खराब हो चुका है, तो उसका मूल कारण है पवित्रता की ऊर्जा की कमी। किसी का अपने बच्चे के साथ रिश्ता खराब हो चुका है, तो उसका मूल कारण है आनंद की ऊर्जा की कमी। और सबसे बड़ा रिश्ता जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा बिगड़ चुका है, खुद का खुद के साथ। अगर रिश्ता खराब हो चुका है, खुद का खुद के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, तो उसका मूल कारण है ज्ञान की ऊर्जा की कमी। तो जब यह गुणों की ऊर्जाएं हम हमारे अंदर भरपूर करते हैं, तो हमारे रिश्ते भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। राजयोग में सब कुछ है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, बस कहने के लिए नहीं है, सब कुछ सच में है, बस इसे अनुभव करना जरूरी है। जैसे हम गुणों की ऊर्जाओं को भरते जाते हैं तो हम अनुभव कर पाते हैं। हमारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक सारी समस्याएं दूर होती जाती हैं और हम सभी बातों में, सभी तरफ से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस में आ जाते हैं और अपने जीवन को बहुत सुख में उपलब्ध कराते हैं और जीवन का सच्चा आनंद ले पाते हैं। तो यह जो प्राचीन राजयोग की विधि बनी है, स्वपरिवर्तक शिवास्त्र, इसमें बस यही विज्ञान स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से हमारे अंदर गुण और शक्तियों के ऊर्जाएं हैं, उनको भरपूर करने के बाद कैसे हमारा जीवन सुख में दौड़ता रहता है, सुख में चलता रहता है। आप अनुभव करेंगे कि इन गुण और शक्तियों को भरपूर करने से आपका जीवन सदा सुख के लिए उपलब्ध हो जाएगा। ओम शांति।